नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाशून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे गुरवे गौरचन्द्राय राधिका तदान्यै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यम् चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भवते नष्टके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरात्रेशे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदिगौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम श्री राधा राधिका रमन श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन पंजाबी बाग में प्रातः श्रीमद भागवत में सत्संग में आपका स्वागत है। कार्तिक महीने में इस दामोदर मास में वात्सल्य रस की परम काष्ठा की मधुर लीला जो दिवाली के दिन गोकुल में प्रकाशित हुई उसका आज रसास्वादन करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्राय बाल लीलाएं जब करते हैं तो तो गोकुल उनका क्षेत्र रहता है और नंद यशोदा और वरिष्ठ गोप गोपियों को वात्सल्य प्रेम का रसास्वादन करते हैं और कराते हैं। और फिर वृंदावन में वत्स चारण और गौ चारण के लीलाओं के द्वारा अपने सखाओं के साथ सखा रस का आदान प्रदान करके साधक भक्तों को आकर्षित करते हैं। और फिर नंदगांव में अपने संग में लाई हुई अपनी ही स्वरूप शक्ति के विस्तार गोपीगणों के संग में रास विहार आदि करके माधुर्य रस की पुष्टि करते हैं। और दास्य रस इन सब रसों में बेस है, फाउंडेशन है, क्योंकि दंड बाबा भी सेवा करते हैं, बलराम जी भी सेवा करते हैं, राधिया जी भी सेवा करती हैं, और सेवक तो है ही सब, तो सेवा बेस है। अन्य रस उसके ऊपर, जैसे दूध तो सब में होता है, उसको कढ़ाएंगे तो रबड़ी बन जाएगी और थोड़ा और गाढ़ा करेंगे तो मावा बन जाएगा, पेड़ा पेड़ा बन जाएगा। ऐसे उसके अंदर फिर पिस्ता बादाम डालेंगे और केसर डालेंगे तो और मीठा हो जाएगा, लेकिन दूध तो एक ही है। तो सेवा जो है वो तो सब में समाई हुई है, उस सेवा में जितनी जितनी मधुरता बढ़ती जाती है, इतना इतना रस का जो है वो, तो सेवा राधा यशोदा बलराम जी सभी सेवा की मूर्ति है, लेकिन उस सेवा के अंदर जो विशेष रस है वो स्थाई है। तो सेवा जीव रसो भी, सब जीव है तो जीव का स्वरूप ही सेवा है। तो इसलिए दास के अलग, दास रस के कुछ भक्त हैं ठाकुर जी के, वो तो सदा ही साथ रहते हैं, लेकिन तीन ये मुख्य प्रकार की लीला उनका ब्रज में भगवान श्री कृष्ण साधक भक्तों को सौभाग्य देते हैं कि ऐसे भक्तों के लीलाओं का अनुगत होकर, अनुगत कर मतलब उनके पीछे चलकर, और भगवान की प्रेममय सेवा का अभ्यास करें। सो इस लीला की भूमिका आठवें अध्याय में होती है, जब मृदु भक्षण का प्रसंग आता है। यमुना जी के तट पे ग्वाल बालों के संग में आज कृष्ण ने मिट्टी खाई और सब ग्वाल बालों ने बलराम के संग आके मां को शिकायत लगाई, और मैया लाठी हाथ में लेके मक्खन खाने से तो किसी के घर का खाए, अपने या पराए घर का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिट्टी खाने से बच्चे के प्रति हित की भावना थी कि कहीं तकलीफ ना हो जाए। तो मैया पहुंच गई वहां, मिट्टी खाई कन्हैया तुम्हारे सारे मित्र कहते हैं, दाऊ दादा भी कहता है, पर नहीं खाई, नहीं खाई। ये सब कहने बोले, सब नाराज हो गए मुझसे, झगड़ा करके चले गए। दाऊ तो वैसे भी मेरे को कहता है तेरे को खरीद के लाए हैं, तू थोड़ी बेटा है। वो तो बाहर से गोरा दिखता है, अंदर से पूरे का पूरा काला है। वो सच है, क्योंकि उसके अंदर कृष्ण बसता है, तो अंदर तो काला ही है। वो तो ठीक है, गलत नहीं बोल रहा है, बोल सही रहा है, झूठ भी नहीं बोल रहा कि गोरा बाहर से दिखता है, अंदर पूरे का पूरा काला है। मैंने नहीं खाई। शिकायतें क्यों लगाई ग्वाल वालों ने जाके, बोला बाकी मक्खन चुरा के खाता था, सबको खिलाता था, मिट्टी किसी को नहीं खिलाया, अकेला बैठ के खा रहा है। तो इसके ऊपर बहुत भाव लिखे, क्यों खाई, मिट्टी में क्या रस है। विघारी सोरी जी दसम स्कंद की टिप्पणी की है वल्लभ संप्रदाय में, उसने बहुत बड़ी इसके ऊपर उत्प्रेक्षाएं लिखी है मिट्टी के उखाने के ऊपर। जो भी है मां ने कहा, अब सामने बलराम सामने खड़ा है और मैया यहां खड़ी है, मुंह खोलो, अब मुंह खोलो। कृष्ण पैसे कह रहे, दो दिन पहले मुंह खुलवाया था तो इसने ब्रह्मांड देखा था, डर गई थी तो मुंह तो खुलवाएगी नहीं, उसको ऐसा आशा थी कि ऐसे नहीं करेगी। लेकिन मैया को तो वो सब भूल गया, अब मुंह खोलने के मिट्टी को तो निगल लिया, मुंह खोला तो वह मिट्टी होगी तो मैया मारेगी, नहीं होगा तो दाऊ मारेगा, तो झमेला है वो सामने खड़ा है, खाई तो है। तो अब अंदर में मिट्टी तो दिखी नहीं, पूरा ब्रह्मांड ही दिखा, मिट्टी तो नहीं दिखी लेकिन पूरा ब्रह्मांड दिखा। और संस्कृत शब्द का अर्थ ये लिखा है, मैंने अकेले ने थोड़ी खाई है, इन सब ने खाई, सर्वभक्षता। जो संस्कृत पद छेद करके जो भक्षता है न भक्षता हम उसको अलग करेंगे तो ऐसे लगेगा इन सब ने खाई। बोला कैसे, बोला सब मेरे पेट में रहते हैं, कहते थे ब्रज रज इतनी अच्छी है, आप ब्रज में गए हो, हमारे को थोड़ा रज रस का आस्वादन करा लो, तो मैं रज खाई है, सबको मिल गई ना, सबने कहा था, मैं क्या करूं, इतने सारे पूरा ब्रह्मांड मेरे पीठ में, विश्व सधाम ने विश्व पूरा इसमें रहता है। और मैया को आश्चर्य लगा, तो भगवान ने कहा ये मैया मेरे को भगवान समझ के फिर पूजने लग गई तो लीला हो नहीं पाएगी। तो लीला को अंदर से विसर्जन कर लिया और यशोदा ने गोद में उठा के दूध पिलाया। और परीक्षित कहता है क्या सौभाग्य है, ब्रह्मांड मुख में देखने के बाद साक्षात भगवान को इस गोपी ने गोद में दूध पिलाया, क्या सौभाग्य था इसका, क्या इसने ऐसी तपस्या की थी। तो उस वक्त सुखदेव महाराज ने कहा द्रोण और धरा को ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था, संत के आशीर्वाद से ये यशोदा और नंद बने और बाल लीलाओं का रसास्वादन किया, ये उत्तर दे दिया वो। आगे नवम स्कंद के अंतिम श्लोक में आएगा कि ब्रह्मा जी को यह सौभाग्य नहीं मिला, शंकर को नहीं मिला, लक्ष्मी को नहीं मिला, जो इस गोपी को मिला। तो ब्रह्मा जी स्वयं को जो सौभाग्य नहीं मिला वो दूसरे को आशीर्वाद देके कैसे देंगे, जो सौभाग्य स्वयं ब्रह्मा को नहीं है वो दूसरे, तब जाके उद्घाटन होगा कि नंद और यशोदा भगवान के नित्य वात्सल्य प्रेम की मूर्तियां हैं। द्रोण और वसु जो द्रोण और धरा थे वो उनमें प्रवेश करके इस रस का थोड़ा सा रसास्वादन किया, जैसे भीष्म पिता में भगवान का नित्य दास है लेकिन जो वसु था वो उसमें प्रवेश करके अपना उद्धार कर लिया, जैसे पांडव भगवान के नित्य परिकर हैं लेकिन उसमें देवताओं का अंश प्रवेश किया, जिन्होंने सेवा का भाव किया, देवता स्वर्ग लोग चल गए, भगवान के भक्त वापस भगवत धाम चले गए। तो ये बहुत बड़ा, सिर्फ तब सुखदेव महाराज को भाव आया कि इतने के ऊपर क्यों आश्चर्य करे हो महाराज, इस गोपी ने तो इसी त्रिलोक की नाथ को बांध दिया था एक दिन, तो अपने ही भाव में इस लीला की स्फूर्ति हुई है। और सुखदेव गोस्वामी सीधा दामोदर लीला का वर्णन करने शुरू करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एकदा गृहदासीशु, एकदा, एकदा का एक तो सीधा अर्थ है एक समय की बात है, इसका एक अर्थ है कि ये सदा नहीं होता है, बहुत रेयर है। एकता का मतलब कभी कभार, तो गोलोक में तो होता नहीं, वैकुंठ में तो होता नहीं, मथुरा में द्वारका में नहीं होता है, ये तो केवल कभी कभार गोकुल में ऐसा लीला का आविर्भाव होता है, प्रकट्य होता है। एक दा का एक दूसरा अर्थ करेंगे तो ये यशोदा का विशेषण है, जैसे यशोदा यश देने वाली, एक दा एक को देने वाली। भगवान तो एक ही है दुनिया में, दो तो है नहीं। वो एक भगवान जिसकी गोद में बैठा हो और कोई दूसरी गोपी कहे कि मेरे को लाला देना, तो उसको देती है कि नहीं देती? किसी बच्चे किसी मां के पास बच्चा हो और दूसरी प्रेम से कहे कि मैंने उसको देना मैया, तो देती है कि नहीं देती? तो ये यशोदा एकदा है, इस एक को कितनों को दिया है। वो एक जो उसकी एकदा यशोदा का अपना विशेषण भी है कि वो एक भगवान जो अद्भुत है, जो उनकी गोद में बैठा है, कोई पास में खड़ा होगा तो उस भगवान को दे देगी। तो ये यशोदा का दूसरा विशेषण है नंद गृहिणी। नंद गृहिणी का एक अर्थ है नंद के घर, घर की मालकिन। लेकिन नंद के आगे जब संस्कृत में अ लगाते हैं तो आनंद गृहिणी, बोले काम क्या कर रही है? दही मंथन का, आनंद में भर के। आनंद का घर है यशोदा, इसका मतलब है बच्चे के लिए जब काम किया जाए, चाहे रोटी सेके, चाहे खीर बनाए, चाहे मंथन करे, लेकिन हृदय में आनंद भरा होना चाहिए। जब भगवान की सेवा हो, भार समझ के नहीं करना चाहिए। असल में साधन अवस्था में हम जब जप करते हैं तो भार लगता है कब पूरा होगा। जब साध्य अवस्था में जप करते हैं तो उस जब रुचि आने लगती है तो उसको छोड़ने का मन नहीं करता। तो पहले स्तर में भार लगता है कोई चीज काम का, तो सेवा भार नहीं लगे, आनंद में भरकर कर रही है। आनंद गृहिणी, आनंद का मानो पूरा घर है यशोदा। यशोदा यश देने वाली, ये कृष्ण को ऐसा यश दिया है जो कृष्ण के पास था ही नहीं पहले। अरे वो तो समग्र यशस्य, सारे यश का सागर है स्वयं, उसको यशोदा ने दामोदर नाम का ऐसा अद्भुत यश दिया जो कृष्ण के पास था ही नहीं। भाई कृष्ण को किसी ने बाधा तो नहीं दिया पहले, बाधा ही नहीं ना। ये यश कृष्ण को किसने दिया? यशोदा ने दिया। सो यशोदा ने क्या किया दिवाली के दिन? अन्य सेवकाओं को दूसरे काम में लगा दिया, अन्य सेवकाओं को दूसरे काम में लगा दिया। इसका मतलब रोज सेवकाएं मंथन करती थी, अगर दंडवत महाराज अगर कहे कि तुम अच्छा नहीं मक्खन बनाती हो, मेरे बच्चा दूसरे के घर चोरी करने जाता है, छोड़ो मैं करूंगी, ये कहना ठीक नहीं है। तो अन्यंत उनको क्या कह दिया? अरे आज तो तू कपड़े कन्हैया के जरा तय करके रख ले, वो इसके स्नान की चौकी तैयार कर, दूसरे कामों में लगाया। ये बहुत बड़ा बुद्धिमानी है, मानो किसी से कोई काम आपको ही करना है, वो जो रोज वो करता है, तो उसको किसी और काम में अच्छी तरह से लगा के फिर काम करो, उसको ऐसे नहीं लगे कि आपने भगाया है। लगाओ भगाओ मत, ये बहुत बड़ा सिद्धांत इस एक लाइन में गोपी ने स्थापित किया है कि अन्य सेवकाओं को अन्य काम में लगा दिया, क्योंकि सेवा तो स्वरूप है। अब स्वरूप सेवा सबका है, तो सेवा से भगवान की सेवा से किसी को निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन दूसरी सेवा में लगा दिया। मुख्य शब्द इस श्लोक में है निर्मंथम स्वयं दधि। स्वयं जो है ना वो मुख्य शब्द है। अरे नंद रानी स्वयं आज दही का मंथन कर रही है, और ये मंथन शब्द चार श्लोकों में आएगा। और मंथन का असल में अर्थ होता है साधन, जीवन में मंथन करना है, जब मंथन करेंगे तो भगवान मिलेगा। तो स्वयं दधी का मंथन कर रही है, तो आनंद में भर के मंथन कर रही है, कैसे पता लग रहा है? तो दूसरे श्लोक में कहते यानी यानी ही गीतानी तद बाल चरितानी च, वो गीत गा रही है। तो भाई खुशी में आदमी होगा तब गाएगा ना, तो बड़े प्रेम से कृष्ण के बाल चरित्र के गीत गा रही है। कैसा चरित्र गा रही होगी? बहुत ऐसी अद्भुत लीला है जिनका तो अभी भी भजन गाते हैं, चंदा ला दे मैया, मैया चंदा ला के दे दे। ये एक भजन कन्हैया के बाल लीलाओं का बड़ा अद्भुत भजन है। पीछे से आके मैया की आंखें पकड़ ली, मैया ने पकड़ के ऐसे हटा दिया, रोने लगा। गोपियों ने कहा देखो लाला वो चांद कैसा है। हाँ क्या है? हंस है। बोला मेरे को ये लाके दो खेलूंगा। अब यशोदा कहती है बेटा हंस नहीं है, ये तो बड़ा समुद्र से मंथा हुआ माखन का लौंडा है। बोले यही माखन खाऊंगा दे दो। बेटा खाता होता तो खत्म हो जाता, इसमें देखो काला काला विष लगा है। मैया कथा बता रही है भागवत की, समुद्र मंथन से विष निकला था, बुरा विष लगा है इसको, कोई नहीं खाता है इसको, ये तो विष का बंधु है। भाई चंद्रमा निकला कहां से? समुद्र से निकला है। कथा है बहुत सीधी सी। ये ऐसे माताएं पहले भागवत की कथा 3 साल के बच्चे को याद करा देती थी, जो अभी आपको जबरदस्ती बिठा के पढ़ाना पड़ता है। ये माताएं अब ये पूरी 8वां स्कंद माता 3 साल के बच्चे को, 2.5 साल के बच्चे को 8वां स्कंद भागवत पढ़ा रही है। समुद्र मंथन से चंद्रमा निकला, विष निकला, तो बेटा इसको खाता नहीं है कोई भी, ऐसे बातों में लगा दिया बच्चे को। फिर कहता नहीं मेरे को यही चंद वाला के दो। थोड़ी देर के बाद तो तेल घी रख दिया, ऊपर से चंदा दिख रहा है। अब बेटा तुम इसको पकड़ो, हम काम करते हैं। तो लगा दिया काम में। तो ऐसी जो भी गीत गाए थे बाल चरित्र के वो गा रही है, शरीर से मंथन कर रही है, सुमरंती सुमरण भी कर रही है, सुमरण भी कर रही है, कीर्तन भी कर रही है, और हाथ से मंथन कर रही है। इसको कहते हैं भक्ति की मूर्ति। ये भक्ति का सूत्र है भगवद गीता के 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक, मत कर्म काम मेरे लिए करो, मत परमो मन से मेरा सुमरण करो, मेरे को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाओ, मद भक्त हृदय से प्रेम मुझसे करो। तो प्रेम से गा रही है, शरीर से परिश्रम कर रही है, मन से सुमरण कर रही है कृष्ण का। दधि निर्मंथन काले, जब दधि का मंथन कर रही है तब दूसरा दोबारा मंथन आ गया। सुमरंती तान अगायत, गायती हुई गाती हुई उसका सुमरण कर रही है। अब ये यशोदा क्या कर रही है उसका, वो तो सुनने में आ रहा है। अब जो नहीं, सुखदेव गोस्वामी बहुत नजदीक जाके यशोदा का दर्शन करते हैं और कराते हैं, और प्रभुपाद जी लिखते हैं जो वात्सल्य प्रेम के साधक हैं उसको यशोदा के इस भाव और रूप का अनुस्मरण करना चाहिए, अनुगत होना चाहिए। तीसरे श्लोक के लिए प्रभुपाद ने विशेष रूप से लिखा है, तो तीसरे श्लोक को पढ़िए। तो आपका
शामं वासापितुकटितटे बिभ्राति सूत्रनाधं पुत्रस्नेहस्नूतकुचयुगं जातकंपं च सुप्रभो राजवे आकाशश्रमभुज चलतकंकनकुण्डले च श्रीनं वक्त्रं कबर विगलन मालाति निर्ममंता।
पहले माता जी के श्रृंगार का वर्णन है। क्षोमम वास, क्षोमम वास, वास का मतलब कपड़े, और क्षोम रेशमी कपड़े, कीड़े का रेशम नहीं, एक नीले रंग का पुष्प आता है अत्सी या अलसी पुरुष के पुष्प कहते हैं, उसके तने से रेशम निकलता है, उस रेशम की सैफरान रंग की ही पीले रंग की साड़ी मां ने पहनी थी। तो एक सीधा बात यह है कि भगवान की सेवा का कार्य हो तो रेशमी कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि उसमें दोष नहीं लगता, रेशमी कपड़े में दोष नहीं लगता है। पूजा के लिए रेशमी कपड़ा पहनना चाहिए, तो उसमें या रेशमी हो नहीं तो मौसम है तो ऊनी कपड़ा ऊन का हो। ये दो ही शुद्ध चीजें हैं जिसको पूजा में यूज करते हैं। तो मां ने पूजा की सामग्री जैसे पहनी है। और पृथु, वैसे पृथु का शब्द अर्थ है वो क्या लिखा है, वैसे पृथु कहते हैं पतले को, क्या लिखा है पृथु का हाथ, जैसे पृथु महाराज पतले पीले पीले थे पतले थे, तो क्या पृथु का अर्थ क्या लिखा है शब्द अर्थ में, पृथु शब्द इस ये बहुत बड़ा, इसको बोलते हैं सुमध्यमा, गोपियों के लिए एक विशेषण होता है सुमध्यमा, उनका मध्य भाग बहुत सुंदर है क्योंकि उनकी कमर बहुत पतली होती है, और तो पृथु पृथु कटित और उसके नीचे जो नितंब है यो भारी है, ऊपर का ऐसा भारी नीचे का ऐसा भारी, कटी तट बहुत जो है वो सुमध्यमा है, तो कटी तटे पृथु कटी तटे, ये कटी का तट, तट जैसे नदी का तट होता है, तो नदी नीचे होती है तट ऊपर होता है, तो यहां कमर बहुत पतली है और नितंब स्तंभ जो है वो भारी है, तो ये क्या जरूरत पड़ी सुखदेव महाराज को वर्णन करने की, अरे ये तो कृष्ण का सिंहासन है, भैया गोद में कहां बिठाएगी, अरे बच्चे को बिठाने की जगह कौन सी है, बता इधर ही अटकता, यही अटकने की जगह है बच्चे की, ऐसे उठाएंगे तो बच्चा ये अटकने की जगह है, ये अगर ऐसा नहीं होगा मेरे जैसा उठाएगा तो बच्चा खिसक के नीचे जाएगा बच्चे के लिए जगह ही नहीं है फिर वो आसन बना हुआ है इधर, ये पतली कमर है और नितंब भारी है, तो बच्चे के बैठने के लिए बहुत सुंदर आसन है। तो पहले माताएं ऐसे दिल से लगा बंदरिया की तरह थोड़ी उठा जैसे आजकल उठाती है बच्चे को बंदरिया, लेकिन ऐसे उठा के जाती है आगे बांध के बड़ा प्रेम से कम गोद में उठाया था, और उसके ऊपर क्या था सूत्र बद्धम, फिर काम ये 5-10 किलो का मंथन करना है तो कमर के ऊपर कस के पट्टा बांधा, इसको बोला कमर कस के काम करो, कोई भी भगवान कृष्ण कूदते हैं जब खाली देह में तो कमर के ऊपर पट्टा कस के बांध के फिर कूदते हैं, तो ये पट्टे को अच्छी तरह से बांधा है मैया ने, कमर को कस के बांधा है कि कम से कम एक पौना घंटा घंटा मंथन करना, तो ये सूत्र नधम ये तो बांध दिया, पुत्र स्नेह इतना प्रेम था हृदय में, आज के मेरे हाथ का मक्खन जब मैं तैयार करके खिलाऊंगी ना तो कभी किसी गोपी के घर में फिर चोरी करने जाएगा नहीं, वो स्नेह जो मां का था जो पिघल के दूध बना था वो अंदर रोने लगा कि आज रोज सुबह तो मैं भगवान का भोग्य बनता हूं, आज मक्खन खाएगा तो मैं रह जाऊंगा, तो वो स्तन से चूके बाहर आ रहा था, बोला आएगा मुझे देखेगा कि मैं उसके लिए व्याकुल हूं तो मेरे को पान कर लेगा, ये दूध का भाव है, दूध भगवान के भोगे जो है वो स्तनों से दूध चूके बाहर आ रहा था, ये मां के प्रेम, मां का प्रेम पिघल के दूध बनता है, बच्चे को प्रेम बाप भी करता है दादा नाना चाचा सब करते हैं लेकिन मां का ही पिंड पिघल के दूध बनता है और किसी का नहीं बनता, और वो स्तन से अपने आप चूके बाहर आ रहा था, और कंगनम च सुग्रह कुछ युगम जात कंपम, अब जब ये मंथन कर रही थी तो हिल भी रहे था सारा वक्षस्थल हिल रहा था, दूध चूके बाहर आ रहा था, और मैया की सुब्रह कहते हैं सुंदर भ्रुवें जिसकी हो, लेकिन सुंदर भ्रुवों में सुंदरता कब आती है जब वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद बच्चा सोया है उसको देखती है, आंख मटका के देखती है अभी सोया हुआ है ना, ऐसे गाती हुई देख लेती हाँ अभी है सोया हुआ है ठीक है निकल जाएगा, तो सुंदर भ्रुव का तब सुंदर भ्रुव है जब भगवान को देखने के लिए बार बार आंख को मटका के वहां देखे, तो ये सुंदर, ये सुंदरता का, ये यशोदा की सुंदरता का वर्णन है, वो बार बार आंख को घुमा घुमा के वहां देख रही थी, और रज्जु रस्सी को, रज्जू को आकृष शर्म बहुत बड़ा परिश्रम से खींच रही थी, तो हाथों के अंदर जो कंगन थे वो छनछन कर रहे थे और माटी के अंदर मंथनी धम धम कर रही थी। मंथनी मानो मृदंग बज रही है और चूड़ियां खड़ताल बज रही है। तो ये दो तो साथ साथ में लग गए। एक तो महात्मा लिया वो जो बजता है मंथनी धम ना धाधिक धाधिक पंता पंता, अरे जो कृष्ण भजन नहीं करते धिक्कार है उनके ऊपर, धिक्कार है। सुबह सुबह जो मक्खन नहीं बनाते हैं भगवान को भोग के लिए उनको धिक्कार है, तो सबको धिक्कार है, कोई नहीं बनाता है। मैया ने एक बार करके बता दिया, अरे सुबह सुबह भगवान के भोग के लिए मक्खन बनाना चाहिए, दो चार गैया घर में होनी चाहिए। कहां रखें, गैया ही चली गई घरों के अंदर से। गृहस्थ के घर में चार गैया होनी अनिवार्य होती थी। घर में पहले लोग पूछते हैं तुम्हारे घर में दूध है पूत है, अब तो कोई नहीं कि दूध पूत पूछ, पूत तो है नहीं घर में, भूत है एक आधा है वो भी भूत है। दूध भी नहीं पूत भी नहीं, तो बाकी गया का घर में क्या रह गया, कुछ भी नहीं रह गया। सो मैया और शिव ने पसीना आ रहा था। वक्त मां क्यों परिश्रम ऐसा, पसीना कब आ रहा था, दिवाली के सुबह सवेरे चार बजे। सर्दी होती है कार्तिक के महीने में, सुबह सर्दी हो जाती है और मैया इतना परिश्रम कर रही थी कि पसीना आ रहा था। और ऐसे लिखा है जैसे काले बादलों से बरसात गिर रही है, ऐसा पसीना आ रहा था। मैं सोचता 80 साल की यशोदा को तो पुत्र हुआ था, तभी तक काले बाल थे और असली काले थे, उससे पसीना आ रहा था। माता के काले बालों का वर्णन है, कल हमने आपको कहा कि जो स्निग्ध रक्त मुखाम्बोजम अत्यंत नीलई स्निग्ध रक्त, स्निग्ध रक्त जो उसका अर्थ क्या है, भगवान के रेशमी रेशम जैसे चिकने चिकने जो काले बाल है ना उनमें लाली आ गई है। रक्त का मतलब लाली आ गई है। बोले लाली कैसे आ गई है, तो सारा दिन राधा का ध्यान करता है बाल भी लाल लाल होने लगे। जिसका ध्यान करते हैं, हम बहुत विचार किया, सफेद बालों वाले अगर कृष्ण के बालों का ध्यान करेंगे तो उनके बाल काले हो जाएंगे, काय के लिए खर्चा करना चाहिए। सारा दिन कृष्ण के बालों का ध्यान करो, बाल काले हो जाएंगे, नहीं करोगे तो मुंह काला होगा। बहुत सरल उपाय है असल में। तो पसीना हो रहा था मां को, और फिर मालती के फूल निर्मा, मालती निर्मंथन, अभी भी निर्मंथन मंथन के मालती के फूल गिर रहे थे। अब ये लिखने की क्या जरूरत है, मालती ब्रह्म विद्या का प्रतीक है। ब्रह्म विद्या ब्रह्म रुंधर पे सर के ऊपर रखी जाती है, लेकिन जब प्रेम से मां भगवान की सेवा में ऐसी कृष्ण की लगी, ब्रह्म विद्या कहती है अब हम आपके माथे के ऊपर रहने के नहीं, आपके चरणों के रहने के लिए हमारा अधिकार हो गया। वो गिर गिर के माता के चरणों में आ गई कि ब्रह्म विद्या बहुत बड़ी महान है सर के ऊपर रखने के लिए। तब तक जब तक भगवान की सेवा नहीं मिली है, भगवान की सेवा में लग जाओ तो ब्रह्म विद्या अपने आप नीचे उतर के गिर के आ जाती है। जैसे कुंडल मकर आकार कुंडल भी योग और कुंडलिनी का प्रतीक है, वो तब तक अच्छा है जब तक भगवान की सेवा में नहीं लगता। ये बारहवें स्कंद में इसका परिभाषा ऐसी है। तो मालती के फूल नीचे गिर रहे थे, ब्रह्म विद्या कहती थी ऐसी देखो प्रेममयी मां के हृदय में सेवा कृष्ण की मिल जाए तो ब्रह्म विद्या भी उसके सामने उसके चरणों में बैठने के लिए उसकी इच्छा होती है, सर के ऊपर रहना नहीं चाहती। अब इतना सारा मैया का प्रेम है, अब कन्हैया सोया रहे तो अच्छा नहीं लगता। मैंने तो स्वयं ने कहा है कि यत्र गायन्ति मद भक्त तत्र तिष्ठामि नारद, जहां मेरे भक्त गुणगान करते हैं मैं वहां आता हूं। मेरी मां कितने प्रेम से मेरे को मेरे गुणगान कर रही है, मैं सोया रहूं तो लोग कहते हैं मां के पास भी नहीं गया तो हमारे पास क्या आएगा। तो लाला जागा, जागा अपनी आंखें मछली नींद से उठ के, और काजल नीचे आ गया। मां मां किया, मां तो थी नहीं पास में, रोज मां उठाती थी, मुंह साफ करती थी, दांत मांजती थी, दूध पिलाती थी, आज मां नहीं उठाया, अपने आप उठ गया। मां मां करके देखा मां नहीं है, और कीर्तन का आवाज सुना तो नीचे लटक के उतरा। 3 साल से छोटा उम्र है, और चल के सीधा जहां मंथन हो रहा है वहां आके खड़ा हो गया। मां दूध पीऊंगा, भूख लगी है। आवाज में मां ने तो सुना नहीं, सुना नहीं तो ऐसे पकड़ लिया मंथनी को, और मंथनी को पकड़ लिया, काम रुक गया, काम रुक गया। यशोदा ने आंख खोल ली, आंख खोल ली तो मुस्कुराया, बच्चे को सामने देखा, खुश हो गई। खुश क्यों हो गई? बोला कितना बुद्धिमान है देखो, और इतनी बड़ी मंथनी को पकड़ लिया, बलवान भी है बुद्धिमान भी है, शक्ति कितनी आ गई है, बड़ी रबड़ी और माखन ने काम दिखाया है, बच्चा बुद्धिमान भी है, और कैसे काम को मेरा रोक दिया है मां ने। तो ये जो इस श्लोक में एक शब्द है स्तन, शब्द है ताम, क्या शब्द है ताम स्तन कामाय, चौथा है ना श्लोक। इसके ऊपर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जो आपत काम है, कोई दुनिया की कामना नहीं है, उसके मन में मां के स्तन पान करने की कामना उत्पन्न हो गई। आपत काम के हृदय में कामना का उत्पन्न होना ये बहुत बड़ा विलक्षण है। तो भगवान को कुछ चाहिए नहीं, लेकिन भक्त प्रेम करते हैं तो भागता हुआ आता है। तो उनके ताम स्तन काम आसदाय मथंतिम जननीम हरि। अब यहां शब्द जननीम हरि जो है, हरि की जननी, ये शब्द सिद्ध करता है कि यशोदा ने कृष्ण को जन्म दिया, नहीं तो जननी शब्द क्यों सुखदेव बोलेगा? अगर वसुदेव के वहां से कृष्ण आया, वो ये कृष्ण अलग नहीं, तो जननी शब्द क्यों लिखेंगे? ऐसे 10-12 एक भागवत में स्थान में सिद्ध होता है कि कृष्ण यशोदा के वहां प्रकट हुआ, तो उसमें ये जननी हरि, हरि की जननी है। वो हरि की जननी जो मंथा, क्या शब्द है, मंथंतिम जननीम हरि, हरि की जननी मंथन कर रही है। अरे अपनी मां मानता है, मेरी हरि की हरि, वहां हरि लिखा है शब्द, भगवान है साक्षात। काम क्या करता है? दुख हर लेता है अपने भक्तों का। 2 अर्थ महाप्रभु ने हरि के किए हैं, भक्तों का दुख हर ले, प्रेम दे के मन हर ले। आज कृष्ण कहता है मेरी मां सुबह सुबह इतना परिश्रम करके पसीने पसीने हो गई है, उसका तो दुख हरना ही चाहिए ना। तो जाके दुख ऐसा हरता है कि मंथन करना ही छूट गया, ये मटका ही फूट गया, उसको दोबारा परिश्रम करना ही नहीं पड़ा। तो उसका परिश्रम तो हरना है, और प्रेम दे के मन हर, और किया किया ग्रहिता दधि मंथन, उसको पकड़ लिया। निषेध प्रतिम आवह, और प्रीतिम आवह शब्द जो है, से वाहन कहते हैं गाड़ी को, तो कृष्ण वाहन बन गया प्रेम का। इतना यशोदा के हृदय में प्रेम था कि भगवान प्रेम के ऊपर, किसके ऊपर प्रेम चढ़ के आया? कृष्ण को। तो कृष्ण प्रेम से इतने भागते, कृष्ण प्रेम को पकड़ के लाता है। इसका अर्थ ये कृष्ण वाहन बन गया, किसका? प्रेम का। किसके प्रेम का? माता यशोदा के प्रेम का। वो प्रेम उसको उठा के लेके आया। अगर ये यशोदा नहीं करती तो यशोदा रोज कृष्ण को उठाती थी, कृष्ण अपने आप उठ के यशोदा के पास नहीं आता था। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का शिक्षा है कि भक्त को ऐसा साधन करना चाहिए कि भगवान विचलित होके देखे कौन भक्त मेरे लिए ऐसे कर रहा है, और भागता हुआ वहां आए। ऐसा भक्त के हृदय में प्रेम हो कि वो भगवान को भगा के लेके आए। प्रेम भगवान को भगाता है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम प्रेम के वश दुर्योधन को मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। दुर्योधन का मेवा त्याग करे, प्रेम में ये शक्ति है। तो यशोदा के प्रेम कृष्ण को बलात् जगा के लाया, और वहां जब आ गया तो मां ने मुस्कुराया, और कृष्ण अपने आप अंक में चढ़ा, मां ने उठाया नहीं, अपने आप अंक आरूढ़म, कृष्ण अपने आप मां की गोद में चढ़ के बैठ गया। तब मां ने मटके के ऊपर कपड़ा ढक दिया, काम बंद कर दिया। बहुत बड़ी बात है, सर्दी में मक्खन निकालना बहुत मुश्किल है, और आधा पौना घंटा मंथन करने के बाद मक्खन तैयार हो बंद कर दो तो फिर निकलेगा नहीं, फिर उतना परिश्रम करने से भी नहीं निकलेगा। अब मैया कह सकती थी रुक जा थोड़ा दूध बाद में पिलाऊंगी, आज मक्खन खिलाऊंगी, नहीं मक्खन खाना है आपका दूध पीना है। मैया ने बच्चे की बात रख ली, अपना स्तन उसके मुख में दे दिया, काम बंद कर दिया। इसको तो हम जब पढ़ते हैं तब यशोदा की शिक्षा माताओं के लिए है, छोटा बच्चा भूखा हो कहे कि मुझे खाने को कुछ चाहिए तो सब काम बंद करके पहले उसको खिलाना चाहिए, उसमें कभी देर नहीं करनी चाहिए। जाओ आजकल बच्चा कुछ मांगे मैया से और मैया टीवी के ऊपर सीरियल देखती हो तो कहेगी फ्रिज खोल के खा ले बेटा, बेटा फ्रिज को ऐसे खोलेगा अंदर से ठंडी हवा आएगी, बोला मैया ठंडी हो गई, उसके मन में कोई भाव नहीं पैदा होगा। जब मक्खन निकालती हुई मैया को बच्चा देखता है तब कहता है बड़ा होऊंगा मेरी माँ की सेवा करूंगा, देखो कितना पसीना पसीना हो गई है। और जब वो माँ को मक्खन लगाते हुए देखता है तो बच्चा कहता है बड़े होके मैं भी मक्खन लगाऊंगा। ये तो हम अपने हाथों से बच्चों को संस्कार डालते हैं, ऐसा संस्कार डालें कि हमारे परिश्रम को देख के बच्चे कहें माता के आपकी दूध का कर्जा चुका लूंगा, मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। कहते थे पहले लोग, लेकिन ये बहुत बड़ी शिक्षा है माताओं के लिए, दूध पिलाने वाली मां प्रेम से। अब क्या हो रहा, मां के हृदय में प्रेम पिघला, दूध अपने आप निकल रहा है अंदर से, कृष्ण को पीने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ा, दूध तो आने लग। और कृष्ण क्या दे रहा है, सुमित्तम सुसुमित, मुस्कुरा के मां को आनंद दे रहा है कृष्ण, मुस्कुरा के मां को आनंद दे रहा है। और मां कृष्ण के मुख को देख रही है, बेटा बड़े प्रेम से दूध पी रहा है, ये दोनों के बीच में आदान प्रदान इतना सुंदर हो रहा है माता और बेटा। मां के प्रेम से प्रेम पिघल के दूध की धारा और बच्चे की मुस्कान मां को आनंद दे रही है, एक दूसरे का मुख देख रहे हैं एक दूसरे। इतनी देर में दूध चढ़ा हुआ अंगेठी के ऊपर जो था जले न, स्नेह सुमित्तम सुसुमित्तम, वो स्नेह सुमित्तम, वो अपने स्नेह को पिघला हुआ दूध दे रही है। और कृष्ण क्या देता है, सुसुमित्तम, वो अपनी सुंदर मुस्कुराहट दे रहा है। एक क्षते मुखम, एक दूसरे का मुख देख रहे हैं। और इतने बीच में क्या हो गया, अतृप्तम उत्सर्ज जवेन यायो, इतनी देर में दूध जो अंगेठी पे चढ़ा हुआ था, जो बाद में रबड़ी बनना था, वो दूध उफन के नीचे गिरा। वैसे भगवान का भोगे दूध भी प्राकृत नहीं होता है, आज वो दूध कहता है मां का दूध तो खत्म होगा नहीं, इसका प्रेम कम होगा नहीं, और इसके पेट में पूरी दुनिया है, ये इसका पेट भरेगा नहीं, तो मैं तपस्या कर रहा हूं इतनी, मेरा तो आज बारी नहीं आएगी, मैं तो आत्महत्या करके आग में स्वाहा होता हूं। उस दूध बेचारा दुखी हो गया, और मैया भक्त की रक्षा करने के लिए भागी, जाना तो कृष्ण को चाहिए था, आज दया आनी चाहिए ना भक्त के ऊपर। आज कृष्ण कहता है ये दया मां को देता हूं, ये यशो दया भी इसको दे, दया भी ये करे यश भी इसको मिलेगा। इसके ऊपर बहुत बड़ा रहस्य लिखा है कि जो चीज कृष्ण को प्रसन्न करे वो करनी चाहिए ना, अनुकूल है ना करनी चाहिए ना। तो जब कृष्ण चाणूर और मुष्टिक से लड़ रहे थे तो कृष्ण को तो अच्छा लग रहा था कि वाह वाह मेरे को लड़ने का मौका मिला है, लेकिन क्या ये भक्ति है क्या, नहीं ना, तो प्रसन्न कृष्ण हो रहा था लेकिन भक्ति नहीं है। और यहां कृष्ण प्रसन्न नहीं है, क्रोध आया है और यशोदा दूध को उतारने गई है, अनुकूल नहीं है, लेकिन क्या ये भक्ति है कि नहीं, ये अति, दोनों की अति है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, इसमें सिद्धांत ये है कि यशोदा ने भक्त की रक्षा की, जो भगवान की भोग्य चीज है उसकी रक्षा की, इसलिए भगवान से भगवान के भक्तों के सहायता करने से भगवान को प्रशंसा होती है। तो मैया भगवान के भोग्य वस्तु के रक्षा के लिए चली गई और यहां पहले काम आया फिर लोभ आया और पीऊंगा, पेट भरा नहीं तो क्रोध आया, ये पूरी श्रृंखला एक दूसरे का परिवार कटा हो गया। विश्वनाथ चतुर्थी पूरा लिखा है, काम आया फिर लोभ आया फिर क्रोध आया और फिर हंसा मटका फोड़ा और फिर भय हुआ भागा और फिर बंध गया। तो जो भी संसार में काम से काम शुरू करेगा वो बंधन तक जाके पहुंचेगा। इसलिए एक तो महात्मा ने लिखा कि भगवान ने ये बचपन के अनुभव से गीता में शिक्षा दे दी, काम क्रोध लोभ नरक द्वार, हम इसके ऊपर जाना ही नहीं। ये तीन जो है मैं बंध गया था, आप ये काम मत करो बंध जाओगे, मेरे को मां ने बांधा था, यहां तो सरकार बांध देगी, ये झंझट में नहीं पड़ना। ये बड़ा अनुभव भगवान का अपना है बचपन का, बहुत बड़ा अद्भुत अनुभव। अभी मैया तो वहां जाके दूध को उतारा, ठंडा पानी ऊपर डालिया, वो दूध ने देखा कि मैं तो दोनों के प्रेम में बाधा डाल दी, उसका मुंह लटका के नीचे बैठ गया वापस में, तो शर्म आ गई उसको। मैया दूध को रक्षा करके आ गई और यहां इसको क्रोध आया और लाल होंठों को सफेद दांतों से दबाने लगा, खीर सागर को छोड़ के इसका बेटा बना और ये 2 किलो दूध के लिए मेरे को पटक के चली गई। पूतना को जब पकड़ा था तब 6 दिन का था और पूतना 12 कोस की जोर लगाया तो छुड़ा नहीं पाई और ये 3 साल देखो यशोदा ऐसे पटक के चली गई। देखो तो कितना अंतर है, पूतना छुड़ा नहीं पाई और यशोदा फेंक के चली गई। अब क्रोध जो आया तो रजोगुण के दांत है, ये होंठ है लाल लाल रजोगुण, उनको सफेद दांतों से सतोगुण से दबा रहा है कि क्रोध नहीं आना चाहिए, क्यों मुझे क्रोध आ रहा है। लेकिन क्रोध आ जाता है तो वेग में आता है और हिंसा तक पहुंच गया। मन में का दिखाऊंगा मां को मैं क्या कर सकता हूं, ये जो मटका है ये यशोदा की मेरी दादी के जमाने का मटका है, ये तो घी खा खा के मोटा हो गया है ना, आज इसको फोड़ दूंगा। बर्तन का लोग बड़ा पुराने लोग ना, बर्तन मटके का दे जाते थे ना, दही दे देते थे बोला मटका वापस दो। ये जो मटके मटके में पहले तो दही मंथन करते ना, घी लग 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 के वो अंदर से बाहर से पूरा चिकना हो जाता था, वो चिकना मटके में दोबारा मंथन करने से घी कम नहीं होता था, नए मटके में आधा घी पी जाएगा। तो वो पुराने मटके बहुत बड़े संभाल के रखती थी माता लोग, अभी वो मटके ही नहीं रहे। तो पहले तो मटकों का जब जमाना था बड़ा मेहनत वाला काम हुआ करता था। इसके ऊपर आधुनिक नेता की एक बात हम हमेशा कहने कर, एक नेता को एक बार चुना, 5 साल में जितनी चोरी करनी थी वो की, घर बंगला बनाया, बच्चे पढ़ाए, अमेरिका भेज दिए, दूसरी बार इलेक्शन में खड़ा होगा तब प्रवचन करता, कहता देखो पहले चोरी की मैं मानता हूं, आपने मेरे को चुना, जो मेरे को कमाना था मैंने कमा लिया, अब वोट मेरे को देना, अभी तो मेरा पेट भरा हुआ, दूसरे को लाओगे तो फिर इतना ही कमाए चोरी करेगा। मैं तो पुराना मटका हूं और पक गया हूं। तब उसको बोलना चाहिए कि तेरे को फोड़ेंगे भाई। पुराने मटके को कन्हैया फोड़ता है उसे होने नहीं चाहिए। मटका फूटा थोड़ा मजा आया कि वो दही आधा मंथन किया हुआ दही ओढ़ होकर के बाहर निकला। विश्वनाथ चक्रवर्ती की बात कहते उनके हाथ से अपने कंगन को पकड़ लिया कि आवाज ना हो, वहां दूर तो नहीं थी, सामने खड़ी थी, केवल पीठ थी, और फिर जहां नीचे भरा हुआ था वहां मारा कि आवाज नहीं हो, ऊपर मारे को तो बड़ा आवाज होगा, खाली जगह पे भरे हुई जगह पे मारा, इतना बड़ा अंदर से सोराख हुआ और सारा माल निकला और नाचने लगा, आ, 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 आज पता लगेगा मैया को, और फिर डर लगा कि मैया मारेगी और उसी दही के ऊपर से भागा। अब 2.5 साल से बड़ा हो गया ना तो चरणों के निशान उस दही के ऊपर ऐसे निकले थे, अंकुश भी दिख रहा था और जव भी दिख रहा था, वो चरणों के निशान के ऊपर भी बहुत बड़ा सुंदर भाव लेके। अब करना क्या चाहिए, मां को ये दिखाना है मैं भूखा था, तुमने आधे में उतार दिया, क्या करूं मैं, वो मक्खन जो टांगा हुआ है उसको जाके खा के पेट भरता हूं, और क्या करूं। तो दूसरे कमरे में गया। वैसे शब्दों का इतना भाव इधर लिखा है, अंत मां से अंतर, अंत मां से अलगाव कर दिया, मां से अलग जाके दूसरे कमरे में और मटके के उखल के ऊपर चढ़ के और मटके से मक्खन उतारा और बंदरों को बांट रहा है और खाने लगा। ये श्लोक संजात कोप, बहुत क्रोध आ गया और भित्वा मत, और फिर क्या किया, संदर्शते दधी मंथन, ओ तो मटके से उसको फोड़ दिया, भांजनम भांडासुर को फोड़ दिया, और फिर भित्वा भय लगा और मृष अश्रु और जूठे आंसू बहाने लगा। क्रोकोडाइल टीयर से यहां लिखा है, असली आंसू नहीं, नकली, मृष अश्रु और अश्मना रहो, डंडे से पत्थर मारा, जघांस हय अंगम अंतरम गत, मां से अंतर कर लिया, अलग हो गया। अंतरम का मतलब अंदर के कमरे में गया, लेकिन अंतर का मतलब अब तुम्हारे हमारे बीच में अलगाव हो गया, तुम हमको छोड़ के चले गए, कोई रिश्ता नहीं तुमसे, अलगाव अंतर, भाई दोनों के बीच में अंतर कर दिया। और वहां जाके क्या करने लगे, हय अंगम, हय अंगम का एक अर्थ है कि ताजा निकाला हुआ मक्खन, लेकिन मां तो अभी निकाल रही थी, इसे पहले निकाला तो नहीं है, इसका मतलब आज का नहीं है, लेकिन फिर भी कल वाले को ताजा कहना तो ठीक है, लेकिन हम जो खाते हैं वो कब का निकला हुआ है। तो ये उस मक्खन को उतार के खाने लगा, उतारे गोपी, अब गोपी क्या किया, उतारा वहां से, वापस आई और मटके को फूटा देखा तो हंसी, दधि मंथनम, यशोदा तो को हंसी आ गई कि कितना शरारती हो गया है, घर के मटके ही फोड़ दिया, उधर देखा नहीं बच्चे को। और तब मैया ने भगवान वृक्ष स्व सुतस्य कर्मज, और ये मेरे बेटे के काम है, स्व सुतस्य, फिर भी कहते ये मेरे बेटे के काम है, जहास तम चापी न तत्र पश्यति, भाग गया है, दिखता नहीं है, यहां कहां चला गया, तब कहां खड़ा था, तब कहते हैं उलखल अंगड़ी, उल्टा कर दिया उखल को। वैसे प्रभुपाद ने लिखा है लकड़ी के, एक लकड़ी के पुराने मसाला और धान कूटने के उखल हुआ करते थे, वहां जाते हैं तो पत्थर का मिलता है, जहां उखल बंधन लीला में प्रभुपाद ने देखा लिखा वुडन मार्टर लिखा है, देखेंगे उल्टा करके, तो उखल आपने देखे हैं कभी, उखल देखे जो गांव वाले हैं, उखल अभी मसाला पीसने के लिए होते हैं, और उसको उल्टा करके रखते हैं, उल्टा करके क्यों रखते हैं कि खुले में तो ऊपर से कोई बीट भी गिरा है बाहर, घर तो खुले होते हैं ना, पक्षी कुछ गिराए कोई खल, इसलिए उल्टा ही रखते हैं हमेशा, उखल घर में उल्टा ही होता है, सीधा नहीं होता है, जब काम होता है तब सीधा करते हैं। सो उस उल्टे के ऊपर चढ़ा है और ऊपर से क्या कर रहा है, वो मक्खन को उतार रहा है, मर कायक और बंदरों को खिला रहा है, और मैया उसके पांव के निशान देख के उधर पहुंच गई, और क्योंकि चोरी का काम कर रहा है तो ऐसे आंखों से देख रहा है, कहीं आ तो नहीं रही, कोई आ तो नहीं गया, आ तो नहीं रहा, ऐसे देख रहा है आंखें इधर उधर घुमा के, और मक्खन बंदरों को दे रहा है। मैया ने पीछे आके देखा, कौए भी उड़ रहे हैं, सुबह का टाइम तो हो गया, मक्खन देख के बंदर और कौए भी आ गए, तो मैया ने लाठी उठा ली हाथ में, बच्चे को देखा खड़ी है, खड़ा है, तो दबे पांव पीछे से आने लगी, ये लिखा है दबे पांव पीछे से आने लगी, निरीक्ष बच्चे को देख लिया, देखने के बाद पश्चात सुतम आगच स्नेही टिपटो, जैसे अपने पंजे के ऊपर चल के आ रही कि आवाज ना हो, क्यों पकड़ना चाहती थी, भय था कि कहीं भाग के वन में चला गया तो अभी नाश्ता भी नहीं किया है, कहां ढूंढेंगे इसको, पकड़ लेना चाहिए बच्चे को, असल में हृदय में बहुत प्रेम है कि पीछे से जाके पकड़ के पकड़ लेती हूं, लेकिन पकड़ में कहां आता है, वो इतना चाला के मां को ऐसे टेढ़ी आंख से देखा और उखल से कूदा और भागा।
अब उखल से कूद के आगे कन्हैया भाग रहा है और पीछे मैया भाग रही है। तामात्रयष्टिं परमीक्षः ततो अहम् गोप्य। अब कहते हैं आगे भाग रहा है कृष्ण, पीछे भाग रही है गोपी उसको पकड़ने के लिए। और उस वक्त सुखदेव महाराज को आया कि देखो तो सही, अरे योगी मन में ध्यान करके उस परमात्मा को थोड़ी देर के लिए अपने मन में बिठा नहीं सकते हैं, और ये गोपी चली है साक्षात भगवान को हाथ से पकड़ने के लिए इंद्रिया से। यशोदा गोकुले भ्राजमानम, गोकुल में चमक रहा है, प्रकाशित हो रहा है। इसका एक भाव यह है कि ध्यान में भगवान के हृदय में आए तो अंदर प्रकाश होता है, लेकिन ये तो इंद्रियों के बीच में, गो का अर्थ इंद्रियां भी है, गोकुल मतलब इंद्रियों के समूह में, इसको आंख से देख सकते हो, हाथ से छू सकते हो, और इसको इसका प्रेम करो मां की तरह तो सर सूंघ सकते हो, इसको तो अपना स्तन पर, सभी इंद्रियों से भगवान को, गोकुल का मतलब इंद्रियों का समूह, तो ये तो इंद्रियों से यहां प्रेम भगवान की सेवा में लग सकते हैं, जो मन में योगियों के नहीं आता है, इसको गोपी जाके हाथ से पकड़ना चाहती है। सुखदेव महाराज थोड़ी देर के लिए कृष्ण के पक्ष में चले गए, और फिर तो कृष्ण के पक्ष में इतना चले जाएंगे कि मैया आस्ते चल रही है, नहीं हाथ आएगा, क्योंकि मैया का नितंब बहुत भारी है, मैया को चलने में दिक्कत हो रही है, अच्छा है नहीं हाथ आएगा। थोड़ी देर के लिए कृष्ण के पक्ष में सुखदेव हो गए कि नहीं पकड़े तो अच्छा है, हाथ में लाठी है तो भक्त के मन में ऐसे भाव आया। लेकिन कहती है मां का इतना, और फिर माता के फिर बचे हुए पुष्प और गिर रहे हैं, तब कहे क्यों गिर रहे हैं, माता तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं, चलो चलो आगे पकड़ लेंगे। अब भगवान के पीछे भागे कोई परिश्रम करे, जब तक भाग रहे थे तब तक तो हाथ आया नहीं, यशोदा थक के खड़ी हो गई तो कृष्ण खड़ा हो गया, खड़ा हो गया तो मां ने पकड़ लिया, प्रामृष्टम पीछे से पकड़ा, अत्यंत दुर्त्य गोपिया, बहुत बड़ा परिश्रम करके गोपी ने पकड़ लिया। ये बार बार गोपी लिखते हैं, पहले यशोदा लिख दिया, अब यशोदा नहीं लिख रहे कि गोपनीय अपने आप को छुपाने के लिए गोकुल में आया था, कि मथुरा से आया क्यों था गोकुल में, कि मुझे कोई भी कंस का पता न लगे, तो गोपियां उसको ऐसा छुपा के रखती हैं, ऐसा छुपा के रखती हैं कि उखल में बांध देती है, कंस कहते हैं गोपी बांध दिए मेरा क्या करेगा, तो कृष्ण की भगवत्ता को गोपियां छुपा के रख देती है। तो ये गोपी ने पीछे से पकड़ लिया और फिर गुराने लगी, अब गुराता डांटने के लिए गुराने लगी, मटका फोड़ा। यहां तो लिखा है कि आंखें मसलते हुए कि लाठी फेंको फिर बात करो, लाठी नहीं दिखाओगे। जीव गोस्वामी ने लिखा है जब कहा कि मटका फोड़ा तो कहते नहीं फोड़ा, किसने फोड़ा, मेरे तेरे पांव में चांदी का इतना बड़ा कड़ा डालती, भागती हुई जा रही थी, मटका फूट गया, मैंने थोड़ी फोड़ा। वो माताओं के खड़ा होता है ना, तब कहते मटका मैंने फोड़ा, तो ये बंदरों को माखन मैं खिला रही, वो नहीं, जिसने बनाया बंदर वो खिला रहा। अरे तुम बंदर हो, छोड़ दो, जाता हूं वन में, हाँ बंदर हूं तो वन में जाकर हूं, तुम्हारे घर में क्यों रहूंगा। ऐसे वहां वार्ता ऐसी अद्भुत लिखी है, और यहां तो आंखें मसल रहा है, सांस ऊपर नीचे हो रहा है, और मैया के अर्भक वत्सला, अर्भक वत्सला का मतलब बच्चे से तो अपना बच्चा क्या, अरे यशोदा को तो बहुत देर से बच्चा हुआ है, वो गांव के बच्चों को भी बुला के लाके खिलाती पिलाती है, अर्भक वत्सला है, वो थोड़ी अपने बच्चे को मारना चाहती है, इसलिए अर्भक वत्सला ने देखा कि मेरा बच्चा डंडे से डर रहा है, डंडा फेंक दिया, डंडा फेंक दिया, ये तो सिर्फ थोड़ा सा ताड़ना कर रही है बाहर से। इसलिए दो शब्द होते हैं, एक शब्द क्रोध होता है, एक शब्द क्षोभ होता है, क्षोभ जो होता है वो दिखता क्रोध है लेकिन उसमें दूसरे का अहित नहीं है, उसकी भलाई होती है। जैसे बच्चे को मां डांटे तो वो क्षोभ है, क्रोध नहीं है, उसका अहित नहीं चाहती है। कभी पत्नी डायबिटीज के पति को कहे कि नहीं खाने दूंगी आपको, तो वो अति प्रेम के कारण होता है, वो क्षोभ है, वो क्रोध नहीं है। तो मैया को क्रोध नहीं था, वो तो उसको थोड़ा डांटना चाहती थी। तो मैया ने जब ये कह लकड़ी फेंक दी, तब कहा कि आज तेरे को खेलने नहीं जाने दूंगी, बांध के रख लूंगी। और बांधोगी किससे? एक खल का संग करता है, इसी के साथ बांधोगी उखल के। तो वैसे जब लिखा है कि अपने जूड़े से रेशमी रस्सी निकाली, उखल में बांध दी और कन्हैया को बांधने के लिए लाई, तो पूरी नहीं हुई, दो उंगल चोटी हो गई। दूसरी रस्सी निकाली, तीसरी चौथी पांचवी रस्सी के ऊपर रस्सी जोड़ती जा रही है, रस्सी दो उंगल छोटी होती जा रही है। मां को बड़ा आश्चर्य हुआ, आश्चर्य क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तब तो बहुत बड़ी बुरी बुरी गोपियां बाहर निकल के आई, यशोदा को कहने लगी मत बांधो इसको, छोड़ो लाला को क्यों बांध रही हो। ऐसे तो ऐसे कई भक्त हुए हैं, ऐसी कथा को सुन के प्राण निकल गए। एक भक्त ने कहा अरे कन्हैया को बांध दिया, सुन के प्राण निकल गए। कैसे कैसे भक्तों की कथा में ऐसे भक्त की कथा आती है। एक तो ऐसी कथा आती है जिसमें कृष्ण और अर्जुन कहीं जाते हुए जमुना के किनारे दूर चले गए, पानी नहीं मिला तो एक झोपड़ी दिखाई दी, अंदर गए तो एक तपस्विनी स्त्री बैठी थी। तो तपस्विनी स्त्री को कहा कि मैया पानी पिलाओ, पानी के दूध पी लो, दोनों को बिठा दिया। लेकिन तीन तलवारें लटक रही थी। तो अर्जुन ने पूछा कृष्ण ये तपस्या कर लिए तलवारें क्यों लगी। बोला पूछ लो मैया ये क्यों रखी है। बोला पहली तो रखी है इस अर्जुन का गर्दन काटना है। क्या हार गया होता तो क्या फर्क पड़ता, हमारे कन्हैया को सारथी बना के नीचे बिठा दिया, उसका तो गर्दन काटना ही काटना है। बोला मैया दूसरी, अर्जुन तो पिता पूछने की हिम्मत नहीं है। बोला दूसरी द्रौपदी के लिए क्या होता, नंगी हो जाती तो इस साड़ी करके उसने अपने ऊपर ढक लिया। अरे मैया तीसरा, बोला यशोदा को उसको बांध दिया, थोड़े मटके के लिए बच्चे को बांध दिया, अंतिम को मैं नहीं छोड़ूंगी। ऐसी भक्तन थी। फिर भगवान ने कहा वो तो प्रेम के कारण कृष्ण ने किया था, ये भक्तों ने तो आपको कैसे पता। बोला मैं ही तो कृष्ण हूं। तब तो मैया ने कहा ठीक है अब तो मैं मारूंगी, लेकिन तीनों को एक कुछ ऐसा शराब दे दिया जो बाद में अर्जुन को याद आएगा, अर्जुन इस कथा को याद करता है। तो ऐसे बहुत भक्त हैं जो भगवान की ये लीला सुन नहीं सकते, जो वात्सल्य को कैसे बांधा होगा। आप देखो क्या इतना उखल के साथ बांधा हुआ बच्चे को कष्ट होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये तो भगवान की वैष्णवी माया है जो मां को भुला देती है कि ये भगवान है, तभी तो लीला होगी, नहीं तो लीला होगी नहीं। अब मां ने बांधने के बंधे नहीं बंधे तो गोपियों ने कहा इसके जन्म इसके भाग में विधाता ने बंधन नहीं लिखा। खुश हो जाए यशोदा, पर तेरे घर के मक्खन खाती है तब शिकायत करने के लिए पंचायत मेरे घर में करती हो, मेरा मटका फूटा है तब छोड़ दो, नहीं छोड़ूंगी। आज अगर इसको मैंने नहीं बांधा, भले शाम के 5 हो जाए, तब कृष्ण पहली बार मां की तरफ देखा और मां की तरफ देखा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जिसके कुछ अंदर बाहर है नहीं, दुनिया सारी जिसमें उसके चारों ओर रस्सी कैसे आएगी, और वैसे रस्सी गुण है, अरे गुण से भगवान निर्गुण को गुण से कैसे बांधोगे, ये गुण से तो बंधेगी नहीं। तो फिर क्या हुआ, फिर भगवान की संकल्प शक्ति तो भगवान को बंधन में आने, कॉम्पिटिशन कब से शुरू हुई है, पहले मैं दूध पीऊंगा मक्खन नहीं खाऊंगा, कृष्ण जीत गया मैया हार गई। अब मैया कहती है बांधूंगा और भगवान की संकल्प शक्ति कहती है नहीं बंधने दूंगा, तो दूसरी कॉम्पिटिशन चल रही है बहुत तेजी से। अब कन्हैया ने मां की ओर देखा, श्रृंगार सारा बिखर गया है, बालों से फूल झड़ रहे हैं, पसीना गिर रहा है, और यशोदा तो हताश हो गई है क्यों नहीं बंध रहा है। ये नारायण अपने भगवान नारायण जो घर में पूजती थी उसको कहती है नारायण इतना छोटा बच्चा इनके बीच में नहीं बंधा जाएगा, ये तो लज्जा की बात है, मेरी रक्षा करो नारायण। अभी वही सामने नारायण खड़ा था। बोला रो क्यों रहा था। बोला लोग मेरे को देखे शांत होते हैं और मेरे को मेरी मां देख के क्रोध कर रही है। लोग मेरा ध्यान करते हैं शांति के लिए और मैं इसके सामने खड़ा हूं तब भी क्रोध आ रहा है, क्या हो गया मेरे को, मेरी शक्ति समाप्त हो गई क्या, मेरे को रोना आ रहा है। तब भगवान के हृदय में करुणा का उदय हुआ, मैया के परिश्रम को देख के करुणा का उदय हुआ और जैसे ये अनुग्रह की शक्ति का प्रवेश हुआ बाकी शक्ति सब शक्तियां शांत हो गई। यशोदा ने परिश्रम नहीं किया, अपने आप गांठ लग गई और कन्हैया भक्ति से बंध गया। तो ये दो उंगल के ऊपर तो बहुत बड़ी भाषण तो बहुत लंबा है अपनी जगह पे, लेकिन दो सिद्धांत सरल ये है कि भक्त का परिश्रम इतना होना चाहिए कि जपते 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 हरे कृष्ण करते 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 गला सूख जाना चाहिए, हाथ की उंगली थक जानी चाहिए, माला घिस जानी चाहिए, तब भगवान कहेगा अरे कितना परिश्रम कर रहा है मेरा भक्त। तब भगवान को करुणा आएगी तो भगवान प्रेम से बंध जाएंगे। तो एक तो उंगल भक्त का परिश्रम है और दूसरा उंगल भगवान की करुणा है। इसलिए रामानुज संप्रदाय में दो मत है, एक मत जो तामिल पढ़ते हैं वो तामिल वाला मत है, एक वैदिक मत है, एक वालकली बोलते हैं, एक वैदिक तामिल बोलते हैं। तो तामिल वालों का कहना है कि वैदिक वालों का कहना है कि बंदरिया जैसे बच्चे को बच्चा बंदरिया को पकड़ता है ऐसे भक्त को अपने प्रयास से भगवान को पकड़ना चाहिए। बंदरिया को बच्चा जब पकड़ लेता है ना, बंदरिया कूदती है एक पेड़ से दूसरे को, अगर बंदरिया गिर गया तो मां हाथ नहीं लगाएगी दोबारा, बोले गिर गया तुम अच्छा नहीं है मेरे को पकड़ नहीं सकता। तो बच्चा अपने परिश्रम, और जो दूसरे है वो कहते नहीं बिल्ली जैसे अपने बच्चे को उठा के जाती है उसमें बच्चे का परिश्रम नहीं है, बिल्ली की शक्ति से बच्चा पकड़ा हुआ है। भक्त को भगवान भक्त को पकड़ ले तब काम होता है। लेकिन हमारे संप्रदाय के अंतर्गत इन दोनों की आवश्यकता है। कैसी आवश्यकता है? कोई आदमी इस कुएं में गिर जाए तो उसको चिल्लाना तो चाहिए भाई निकालो, तो ऊपर से कोई रस्सी भेजे करुणा की तो उसको पकड़ना तो चाहिए ना, तब ऊपर वाला खींचेगा ना। तो भक्त का नीचे से चिल्लाना और रस्सी को पकड़ने का तो प्रयास करना चाहिए ना, तब ऊपर से करुणा करके कोई रस्सी भेजे और निकाल दे जोर से। तो हमको दोनों की जरूरत है, किसी एक से काम नहीं चलेगा, अपना परिश्रम भी चाहिए और भगवान की करुणा भी चाहिए। तो दोनों चीजों की आवश्यकता है। अब मैया ने तो बांध दिया, तब सुखदेव गोस्वामी अब बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ये दो श्लोक पढ़ के पूर्णाहुति करते हैं। स्वमातु स्वेन गात्राय, जब माता का पसीने में सराबुर शरीर देखा, सारा श्रृंगार बिखरा हुआ, भगवान को कृपा आसीत और ऐसे बंध गए। स्ववशेन कृष्णेन यस्य अब ये 19वें श्लोक में क्या लिखते हैं, एवं संदर्शिता है अहयंगम हरिणा भृत्य वत्स्यता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं शेषवरं वशे। ये भगवान अपने भक्तों के वश में आता है जिसको शंकर ब्रह्मा आदि वश में नहीं कर सकते हैं, उसको आज कैसे इस गोपी ने भक्त के भगवान कैसे हैं, तब कहते हैं भृत्य वत्सला। भृत्य कहते हैं सेवक को, वत्सल कहते हैं गाय को जो अपने बछड़े को अपने बछड़े के पीछे भागती है। ये तो शंकर आदि को, ब्रह्मा को जो इंद्र आदि को प्राप्त नहीं होता है, ये इस गोपी को तब कहते हैं। ये श्लोक विशेष बोलते हैं, नेमं व्रंचो न भवो, व्रंचो का मतलब ब्रह्मा, भवो का मतलब शंकर, न च श्रेय अपि और न ही तो लक्ष्मी, अप्य अंग संश्रेय, ये तो भगवान के अंग से लगे हुए, ब्रह्मा तो भगवान का पुत्र है अंग से उत्पन्न है और शंकर जी तो पोते हैं ब्रह्मा जी के से प्रकट हुए हैं सदा भगवान के ध्यान, और लक्ष्मी तो उनकी छाती के ऊपर विराजमान होती है। इनको हाँ प्रसीदम लेभेरी गोपी यत्त प्राप्य विमुक्तिदा, जो इस गोपी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है ये न शंकर को हुआ न ब्रह्मा को हुआ न लक्ष्मी को हुआ। ब्रह्मा कभी लक्ष्मी कह सकती है कृष्ण तेरे को बांधूंगी खड़े हो जाओ, नहीं कह सकती, तो इस गोपी ने जो प्राप्त किया और ये श्लोक कह के सिद्ध करते हैं कि यशोदा ब्रह्मा को ये सुख नहीं मिला है तो कैसे देगा, तब ये श्लोक है नायम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुतः। और ब्रह्म किसी को हाथ आ जाए तो आ जाए, परमात्मा ध्यान में आ जाए तो आ जाए, गोपी का सुत ये नंद नंदन सुख से किसी को प्राप्त नहीं होगा, यह किसको, ज्ञानी को नहीं होगा, कर्मी को नहीं होगा, योगी को नहीं होगा, ये तो केवल भक्ति के साथ इसको प्राप्त। इस एक श्लोक के ऊपर बहुत विस्तार से इसी को ध्यान, इस सारे अध्याय का ये सार श्लोक है। और ये गोपी इसको बांध के दूसरे काम को करने को चली गई। उसके बाद दूसरे अध्याय में लीला आती है कि कृष्ण के सखा आए, उखल को उल्टा किया, टेढ़ा किया, दो पेड़ों के बीच से गए, अर्जुन वृक्ष गिर गए और थोड़ी देर उनके अंदर से नल कुबेर मणिग्रीव ने प्रार्थना की और उसके बाद आवाज हुआ गिरने का। तब तक तो आवाज नहीं हुआ, नंद बाबा ने आके लाला को खोल दिया, गोद में उठा लिया। लेकिन परीक्षक प्रश्न पूछेगा ये दो कुबेर के बच्चे कौन थे, ये दूसरा अध्याय और अति सुंदर है, बड़ी अच्छी शिक्षा है उसके अंदर नारद गीत की। या भगवान को हमने खोल दिया, बाबा नंद बाबा के द्वारा खोल दिया, आप कन्हैया घूमे जाके मक्खन मिश्री खाए और आप जाके प्रसाद खाओ, हरे कृष्ण शुभपाद की, ग्रंथराज श्रीमद भागवत महापुराण की, हरे कृष्ण।